ఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వామి జీ తో కహ రే థే వహీ ఆ జాఓ మేం భీ సున్ లూంగా. మేనే కహా బా స్వామీ బోలా కి వహా జగా కమ హైదీ మహారాజ ఆపే రామ కన్నా తో రామ కీజే కోయి బాత్. పహలే హమనే విచార కియా థా శురు సే కి సభీ జిజ్ఞాసువో కి సభీ ప్రాణియో కి ఇచ్ఛా కా జో విషయ హై. शुरू में जो विचार किया था भाव सबकी इच्छा एक ही रहती है कि अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति. जो सभी पुरुषों की इच्छा का विषय है उसको पुरुषार्थ कहते हैं. तो पुरुषार्थ चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष. जो जिज्ञासु होते हैं उनकी तो मोक्ष की ही इच्छा होती है, साथ साथ में वो चाहते हैं धर्म अर्थ काम में जाते हैं, लेकिन उसके साथ में उनकी मोक्ष की इच्छा रहती है. शास्त्र ना तो अज्ञानी के लिए है ना ज्ञानी के लिए है. ज्ञानी तो आप्त काम पूर्ण काम हो गया, उसको किसी की इच्छा ही नहीं, और अज्ञानी इच्छा करता ही नहीं, उसके अंदर इच्छा उठती नहीं. कहते हैं महापुरुष लोग की शास्त्र ना अज्ञानी के लिए होता है, भाव जो जड़ पुरुष है उसके लिए नहीं होता, और ना ज्ञानी के लिए होता है. शास्त्र होता है जिज्ञासु के लिए. जिज्ञासु उसको कहते हैं कि जो अपनी आत्मा का सामान्य रूप से ज्ञान रखता है लेकिन विशेष रूप से जानना चाहता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं. सामान्य रूप से तो हम लोगों को ज्ञात है कि आत्मा है या परमात्मा है, ब्रह्म है, परंतु मैं सच्चित आनंद ब्रह्म हूँ ऐसा विशेष रूप से हमारे को ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग जिज्ञासु हैं. हम संसार के, कभी कभी हमारा मन संसार के विषयों की तरफ जाता है और कभी कभी उनको भोगते हुए हमारे को गिलानी होती है, हम उनसे छूटना चाहते हैं. इसलिए हम लोगों को अपने स्वरूप को पहचानने की, ब्रह्म में मिलने की इच्छा है. हम लोग जिज्ञासु हैं, हमारे को मोक्ष की इच्छा है, और यही मेन पुरुषार्थ है जो मोक्ष रूप पदार्थ है, उसी के लिए शास्त्र है जिज्ञासु के लिए. और अनेक प्रकार के शास्त्रकारों ने अपनी अपनी विधि जिज्ञासु के उसको सरलता से बोध हो जाए इसलिए सरल से सरल करके जिज्ञासु को समझाने की चेष्टा की है ऋषि लोगों ने. वैसे जो दूसरे संस्कृत के ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र है या पंचदशी है, वो तो बहुत कठिन है, लेकिन ये जो महापुरुषों ने परोपकार किया, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, तत्व अनुसंधान, जो भाषा में ग्रंथ लिखे है तो वो ही है, तत्व तो वही है, लेकिन सरलता से बोध हो जाए ऐसी चेष्टा महापुरुषों ने की है. तो उसके बाद विचार किया कि मैं तीन देह का दृष्टा हूँ और जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं हैं वो भी मेरे में नहीं है, और जो पाँच कोश हैं उन पाँच कोशों से मैं अतीत हूँ. ये विस्तार से वर्णन किया सा. अब षष्ठी जो कला है, षष्ठ कला, इसमें प्रपंच का मिथ्यात्व का वर्णन किया. उपोधुकार से कहते हैं, पहले प्रपंच की उत्पत्ति बताते हैं फिर उसका निषेध करते हैं. दो प्रकार से शास्त्रकार लोग उपदेश करते हैं, एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से. निषेध मुख से जो करते हैं वो तो उत्तम जिज्ञासु को समझ में आता है. आप तो सब लोग मतलब वेदांत के अच्छे मर्मज्ञ हैं, आप सुनते रहते हैं, कराते रहते हैं. निषेध मुख से नेति नेति करके कहते हैं, नेहना नास्ति किंचन, ये सब निषेध मुख है कि ये कभी हुआ ही नहीं, संसार तीनों काल में कभी हुआ ही नहीं, ये निषेध मोक्ष से होता है। अजातवाद इसको कहते हैं, ये शंकराचार्य जी का अजातवाद है। और मांडुक के उपनिषद में उन्होंने अजातवाद का ही वर्णन किया। ये उन्होंने सभी शास्त्रकारों को एक तरफ कर दिया, क्योंकि अजातवाद किसी का नहीं है। कोई द्वैत है, कोई विशिष्टा द्वैत है, कोई द्वैता द्वैत है, कोई शुद्धा द्वैत है, सब अपने अपने मतलब विधि से वर्णन करते हैं। लेकिन शंकराचार्य का अजातवाद है कि कभी ये तीनों कालों में हुआ ही नहीं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं वो कहते हैं संसार तो है लेकिन मिथ्या है, कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं संसार जो है असत है, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं हुआ ही नहीं कभी, तीनों कालों में नहीं हुआ। लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आती। महापुरुष लोग वहाँ बताते हैं हम लोगों को कि उत्तम जिज्ञासु के लिए एक ही उपनिषद है, मांडुक के उपनिषद। जो उत्तम जिज्ञासु है उसके लिए मांडुक के उपनिषद एक ही वो पढ़ ले, उसका मनन चिंतन कर ले, तो उसको साक्षात्कार हो जाता है। बाकी उपनिषद इसलिए बनाई गई जिज्ञासुओं के लिए अलग अलग, तो इसलिए सरलता से बोध कराने के लिए ये किया है। अब हम लोग सुनते कई साल से महापुरुषों से सुनते हैं, लेकिन बार बार आसक्ति हमारी जाती है विषयों की तरफ, क्योंकि एक जन्म का हमारा अभ्यास नहीं है, कई जन्मों का अभ्यास है, इसलिए बार बार उसी में आसक्ति होती है। तो ये प्रपंच का मिथ्यात्व जो है ना, ये बताएंगे अध्यास के द्वारा, भ्रांति के द्वारा, क्योंकि वेदांत का जो विचार है उसका मूल कारण है अध्यास। अध्यास की निवृत्ति के लिए ही पूरा वेदांत का जो चिंतन हम करते हैं। और कुछ करना तो नहीं हमारे को, ना हमारे को कुछ बनना ही है, बनना भी नहीं है कुछ, ना बनने की चेष्टा ही करना है। यदि हम आप कुछ बनना चाहेंगे तो जो बनता है वो बिगड़ जाता है, इसलिए बनना भी कुछ नहीं है, करना भी कुछ नहीं है। केवल जो हमारे को अध्यास हो गया उसी की निवृत्ति के लिए जो यत्न हम करना वही करना है। हमारे को बनना नहीं है, प्राप्ति किसी की नहीं करनी, प्राप्त की प्राप्ति है, और जो है ही नहीं उसी को हम छोड़ने की इच्छा करते हैं, तब भी नहीं छूटता, है भी नहीं है तब भी हमने ऐसा पकड़ रखा है, ना होते हुए भी हमने पकड़ रखा लेकिन छूटता नहीं है। तो अध्यास को छोड़ना है, वही इसमें कहते हैं कि सकल दृश्य सो अध्यास, जितना नाम रूप आत्मक प्रपंच है ये सभी अध्यास है। अध्यास कहते हैं भ्रांति को, भ्रम को कहते हैं, भ्रांति को कहते हैं अध्यास। तो जितना सकल दृश्य है नाम रूपात्मक जो दृश्य है यह अध्यास है, इसको हमने छोड़ना है। इसको छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि हमारे को तो सत्य लगता है, छोड़ा तभी जाए जबकि हमारे को निश्चय हो जाए कि ये झूठ है, तभी तो हम छोड़ सकते हैं। या हमारे को पता चल जाए कि इस काम से हमारे को फायदा होने वाला नहीं है, हमारा तो ये स्वभाव है ना। एक शास्त्रकारों का नियम है कि बिना प्रयोजना मंदो पिना प्रवर्तते, शास्त्रकार कहते हैं कि बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि वाला आदमी भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। किसी मूर्ख से मूर्ख आदमी को बोल दो कि ये काम करो तो पहले प्रश्न करता कि मेरे को मिलेगा क्या। जिसको हम मूर्ख समझते हैं ना, जड़ समझते हैं, वो भी ये प्रश्न करता कि मेरे को ये करने से क्या मिलेगा। इसका मतलब हर आदमी को स्वार्थ है, बिना प्रयोजन के आदमी प्रवृत्ति नहीं होता। तो हमारा प्रयोजन हमारे को पता चले कि इसमें जो प्रपंच है, सभी महात्मा लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं हुआ, ये झूठा है, इसमें हमारे को फायदा नहीं होने वाला, लेकिन हम लोगों को तो फायदा होने होता दिखता है ना, इसलिए नहीं हम छोड़ पाते। हर चीज को जिसको हम पकड़ते हैं ना, हमारे को उसमें से कुछ फायदा दिखता है, छोड़ते तभी हैं जब हमारे को पता चलता कि नहीं अब इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक मिलता है तब तक छोड़ते नहीं है। एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो जब तक हमारा स्वार्थ पूरा होता तभी तक करते हैं, इसलिए हम विषयों से भी तब करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे को क्षणिक सुख उसमें से मिलता है। हम लोग थोड़ी देर के लिए सुख मानते हैं, जब पता चलता है कि अब इसमें कोई सुख नहीं हो तो छोड़ देते हैं। तो जब ये प्रपंच झूठा है, इसमें से कुछ भी तत्व हमारे को मिलने वाला नहीं है, जो हमारे को सुख चाहिए वो इसमें से नहीं है, क्योंकि कहते हैं उपनिषदकार कहते हैं कि जो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ती, यो भूमा है जो व्यापक है उसी में सुख है, वही सुख सुख स्वरूप है। नाल पे सुख मस्ती, अल्प कहते हैं जो परिच्छिन्न है, जो दृश्य है, जो परिच्छिन्न है, जो कार्य रूप है, उसमें से सुख नहीं है। हमारे को सुख लगता है उसमें, क्षणक मात्र जो सुख है वो हमारे को बहुत ज्यादा महसूस होता है, हम उसी में से आनंद मानते रहते हैं, उसी आनंद के कारण हम जो आनंद का सागर है उसमें नहीं पहुंच पाते। थोड़े थोड़े सुख के लिए यत्न करते रहते हैं, कभी इसको छोड़ते तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते तो उसको पकड़ लेते हैं, छोड़ते भी रहते हैं, पकड़ते भी रहते हैं, तब भी समझ में नहीं आता। किसी मानो जैसे हम मिठाई कोई खा रहे हैं ना, लगातार हमारे को वो मिठाई दे देता ना दो तीन चार दिन, तो उसी मिठाई को हमारा देखने को मन नहीं करता। जब दो चार महीने उस मिठाई को ना खाओ तो मन ललचाता है, पानी आ जाता मुंह में, लेकिन फिर दो चार दिन जैसे सब्जी गोभी की सब्जी चार दिन लगातार दे दो तो उसकी तरफ देखने को मन नहीं करता। इसी से पता चलता है, वो स्वामी जी को लाना, इसी से पता चलता है कि हम लोग उसमें क्षणक सुख में ही आनंद मानते हैं। ये अब कहते हैं सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना। ये जो सकल जगत है ये दृश्य है, कार्य रूप है। ष्ठ कला हमारे शुरू से कर रहे हैं, छवी कला तो सकल दृश्य अध्यास, संपूर्ण जो दृश्य है यह अध्यास है, ये भ्रांति है, इसको छोड़ना है। तो छोड़ना तभी होगा जब हमारे को पता चले कि ये भ्रांति है, ये भ्रम है, ये झूठा है। उपराएंगे उपराएंगे
नहीं ना,
ठीक है कोई। तो सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, संपूर्ण जो दृश्य है ये अध्यास है। दृश्य और दृष्टा दो ही होते हैं, तो हम तो दृष्टा है, हम दृश्य नहीं है। हमारे से इतन जितना कुछ है वो सब दृश्य है, केवल हम दृष्टा हैं। तो दृष्टा भी तभी तक है जब तक दृश्य है, जब दृश्य नहीं रहेगा तो दृष्टा भी नहीं रहेगा। पहले तो दृष्टा भाव बनाना पड़ेगा हमारे को, तो जब जैसे फिटकरी होती है ना, फिटकरी पानी में डालते हैं तो पानी में इसलिए डालते हैं कि पानी साफ हो जाए, जब पानी साफ हो जाता तो फिटकरी स्वयं नहीं रहती, वो पानी को साफ करके ये नहीं कि अलग से रहती है, वो पानी के रूप हो जाती है, क्योंकि उसको जो करना था कार्य वो पूरा हो गया, अब उसके बाद उसको कुछ करना ही नहीं है। हम लोग पहले तो अपने आप को साक्षी मानेंगे ना, दृष्टा मानेंगे, दृश्य का जो जीव है वो एक जीव है कि जीव साक्षी है, स्वामी जी आपको बताते ही रहते हैं। तो इसलिए जो विशिष्ट होता है, जिसमें विशेषण लगता है ना अंतःकरण, जिसमें विशेषण लगता है वो अलग है, जिसमें उपाधि है अंतःकरण वो अलग है। तो इसलिए हम लोग विशेषण वाले नहीं हैं, विशेषण से अलग हैं, केवल उपाधि के कारण हम अपने आप को जीव मानते हैं। उपाधि कार्य के साथ अटैच नहीं होती, अलग होती है, अलग होती है उपाधि। जो घाट है वो आकाश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है वास्तविक, लेकिन जब तक घाट है तब तक आकाश दिखाई देता है। तो हम अपने आप को दृष्टा बनाना है, दृष्टा बनाना नहीं, दृष्टा हैं हम, मतलब दृष्टा अनुभव करना है, साक्षात करना कि हम दृष्टा हैं, वो भी तब तक जब तक हमारे को दृश्य का अभाव नहीं होता। दृश्य को केवल पहले इतना निश्चय करेंगे कि दृश्य के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, हम देखते हैं इसको, लेकिन इसके साथ हम अटैच नहीं हैं। ये दृश्य रहता है तब भी हम जानते हैं, जब जागृत में और स्वप्न में रहता है तब भी हम जानते हैं, जब इस दृश्य का सुषुप्ति में अभाव हो जाता है तब भी हम जानते हैं। पहले ऐसा निश्चय करेंगे। तो जब हम इसके अभाव को भी जानते हैं, इसके भाव को भी जानते हैं, इसका मतलब इसके ना रहने पर भी हम रहते हैं, तो जब इसका अभाव हो जाएगा दृश्य का, तो दृष्टा कहाँ रहेगा? दृष्टा तो दृश्य की अपेक्षा ही है ना, ये द्वंद्व है ना दोनों, एक देखने वाला एक दूसरा देखने वाला। जब देखने वाला ही नहीं रहा तो देखने वाला कहाँ, किसको देखेगा वो? तो पहले पहले इसको मनन करने के लिए हमारे को दृष्टा बनना है। उपनिषद में आया है कि दृष्टा अदृष्टा हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, पिता अपिता हो जाता है। जहां जाकर के द्वैत मिट जाती है वहां कोई दृष्टा दृश्य भाव नहीं रहता, सेवक स्वामी भाव नहीं रहता, और पत्नी पति भाव कुछ नहीं रहता। ये सब द्वैत में है, जब तक द्वैत है तब तक हम दृश्य को उसका दृष्टा बन के देखेंगे। जब दृष्टा दृश्य भी खत्म हो गया तब फिर दृश्य जब नहीं है तो दृष्टा भी नहीं है। ये कहते हैं पहले तो सकल दृश्य सो अध्यास, संपूर्ण जो सकल दृश्य है, सकल के अंदर संपूर्ण के अंदर सब कुछ आ जाता है। यहाँ सकल शब्द आ जाता है, सकल मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण में हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा अंतःकरण, ये भी सकल के अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं समझना कि हमारे को छोड़ के जो संपूर्ण है, हमारे को मतलब इस शरीर को लेकर के नहीं कहना, हमारे आत्मा दृष्टा स्वरूप को छोड़ करके हमारे इंद्रिय, हमारा अंतःकरण, हमारा शरीर, ये भी सकल में आ जाता है। इसको भी छोड़ना है साथ में, इसका भी अध्यास छोड़ना है। ऐसा रहता है कि जो दूसरा हम देख रहे हैं इसको छोड़ना है। तो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंड में है वही पिंड में है, तो ब्रह्मंड जो सकल है उसको कब छोड़ेंगे? जब हम पिंड को छोड़ेंगे। पिंड और ब्रह्मंड दोनों का अभेद है, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मंड है। जिसने पिंड को जान लिया वो ब्रह्मांड को भी जान लेगा, और जो जड़ है वो ना अपने आप को जानता है ना दूसरे को जानता है। चेतना अपने आप को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। हम पिंड को जान लें तो ब्रह्मांड को तो जान ही लेंगे। ब्रह्मांड का ही एक टुकड़ा है पिंड, उसका ही एक हिस्सा है। तो जब हम जान लेंगे इसको तो ब्रह्मांड को भी जान जाएंगे। जैसा ये है, ये व्यष्टि है वो समष्टि है, ऐसे ऐसे पिंड जो है जोड़ करके ब्रह्मांड बना है। तो जब हम पिंड को जान जाएंगे तो ब्रह्मांड को तो जान ही जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। भाव चेतन तो वही पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। तो संपूर्ण जो सकल दृश्य है यह अध्यास है, इसको हमने छोड़ना है। अध्यास कहते हैं भ्रम है, भ्रांति है, झूठा है, मिथ्या है। तो झूठी जो वस्तु है उसको तब तक नहीं हम छोड़ सकते जब तक हमारे को उसमें झूठ का निश्चय नहीं हो जाता। झूठ सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन झूठ बोलते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं लेकिन बोलते भी रहते हैं झूठ। कभी हम छोड़ नहीं पाते झूठ, बोलते ही रहते हैं। वो कहते हैं कि झूठ तो हमारे से नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि झूठ जो है उसको हमने सत्य मान रखा है। छोड़ते इसलिए नहीं कि उसमें से स्वाद आता, रस आता है, उसको हमने सत्य मान रखा है। कहते उसका नाम हमने झूठ रखा है लेकिन माना सत्य है। उसका नाम मात्र रखा हमने कि झूठ है। यदि हमारे को निश्चय हो जाए कि यह झूठ कभी हुआ नहीं तो हम कभी नहीं बोल सकते, ना उसको पकड़ सकते हैं। संसार की वस्तु का हमारे को निश्चय हो जाए कि ये हमारे साथ जाने वाली नहीं, या हमारे को इसमें से फायदा होने वाला नहीं, तो छोड़ देते हैं। और छोड़ा हमने कई लोग, हम कई वस्तु में हम छोड़ते ही हैं, तब तोड़ते हैं जब निश्चय होता है कि अब इसमें से कोई फायदा नहीं है। कोई गाय भैंस जब दूध देती है तो तब तक तो हम उसको पकड़ते हैं, उसकी सेवा करते हैं। जब वो नहीं देती तो कहते हैं अब इसको बेच दो। तो पहले उसमें से फायदा हो रहा था, हमारा स्वार्थ था, तो जब हमारा स्वार्थ निकल गया, इसी प्रकार आदमियों को भी पकड़ते हैं, एक दूसरे को, भाऊ बंधु को, सबको पकड़ते हैं जब तक कुछ मिलता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुख में आन बहुत मिल बैठ तो, रहत चहु दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, वो ना आवत नेरे। जब तक सुख में आन का मतलब होता कि जब तक सुख मिलता है, जब तक किसी से सुख मिलता है तो सभी उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोई नेता होता है तो जब तक नेता अपनी कुर्सी पर होता है मालूम होता है कि इसमें से कुछ मिलेगा तो सब लोग घूमते हैं। वही नेता जब कुर्सी से उतर जाता है तो कोई नहीं आता उसके पास में। ऐसे ही घर में माता पिता की बात है, पति पत्नी की बात है, जब तक कोई ले रहा है कुछ दे रहा है तब तक ही एक दूसरे से प्रेम होता है। विपत्त पर ही सब ही संग छाड़, जब पता चलता कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई या इसको कोई ऐसा रोग हो जाता, वही पति होता वही पत्नी होती है, किसी को कैंसर हो जाता किसी को कुष्ठ हो जाता है तो कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं होता, लोग मुंह बांध के भागते हैं वहां से। जो उसके पास में रहते थे कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, वो मुंह बांध के जाते हैं कि हमारे को बीमारी ना लग जाए। और जब कहीं शरीर ही छोड़ जाए तो उसको दो मिनट भी एक घंटा भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी इनको ले जाओ, घर की नार बहुत है तो सदा रहते संग लागी। जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी, वो कहती है तो प्रेत हो गया इसको ले जाओ। मतलब उसके मुख से भी डर लगने लगता है, जिसके साथ में जीवन बिताया होता है ना उसको देख करके भय होता है कि ये प्रेत हो गए। तो इसका मतलब है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ हमारा क्या है, स्वार्थ हमारा है सुख, और कोई स्वार्थ नहीं है, सुख का ही स्वार्थ है। और सुख भी ऐसा जो कभी नष्ट ना हो, क्षणिक सुख के लिए तो हम नहीं करते हैं, भले हमारे को लगता है, लेकिन हमारी जो जिज्ञासा है ना सुख की बढ़ती जाती है, जो वो इसी बात का प्रमाण है कि हम उस सुख को चाहते हैं जो कभी जाए ना। इसलिए थोड़ा सुख जहां से मिलता लेते हैं, जब उसमें से मजा नहीं आता तो दूसरे को पकड़ते हैं, क्योंकि सुख हमारे को वो चाहिए जो जाए ना, जिसको पकड़ते हैं उसमें से चला जाता है। यही प्रमाण है इस बात का कि हम अविनाशी सुख को चाहते हैं। जब हम संसार की सभी वस्तुएं भोग लेते हैं ना, भोगते भोगते थक जाते हैं, तब हम जो है फिर कहते हैं कि जब शरीर छूट जाए, अंत में यही होता है। जब आदमी ऊब जाता है ना, परेशान हो जाता है, जब कोई असाध्य रोग हो जाता है आदमी को, तो फिर वो कहता है कि मेरा कोई अनुष्ठान करो, कोई मेरे लिए अरदास करो कि मेरा शरीर छूट जाए, मेरे प्राण छूट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इसका मतलब क्या हुआ? कभी आपने प्रश्न उठा के नहीं देखा होगा कि मरने के बाद कौन सा सुख है। जब हम पहले इस शरीर को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं है, इसको बचाने के लिए बहुत यत्न करते हैं ना, तो इसको बड़ा होने देते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़ा भी ना हो जाए, और बहुत कोशिश करते हैं अंत तक कि हमारा शरीर कभी छूटे ना। जब हमारे को पता चल जाता है कि मुझे बचेगा नहीं, तब फिर हम कहते हैं कि इसको छोड़ने के लिए अरदास करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस शरीर को छोड़ने के बाद भी कोई सुख है, वो देखा किसने है? वो जो सुख हम शरीर के भीतर रहते हुए मानते थे वही तो हम सुख मानते हैं कि सबसे बड़ा यही है। जब तक हैं हम जाएं ना तो सुख भोगते रहें, लेकिन आप कहते हैं कि शरीर छूट जाए तो हम सुखी हो जाएं। इसका मतलब है ना, ये बात जो है सामान्य है, लेकिन इसको सोचेंगे तो पता चलेगा कि शरीर छोड़ने के बाद भी हम कैसा सुख चाहते हैं कि जो इस शरीर के रहते हुए हम नहीं भोग पाए, ऐसा सुख वो है अविनाशी सुख, कि इस विनाश शरीर विनाशी है, इसके बाद भी जो मिलने वाला है वो तो अविनाशी हुआ तभी तो मिलेगा वो। और इसका मतलब ये हुआ कि हम शरीर से अलग हैं, तभी कहते हैं कि शरीर मेरा छूट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। यही तो मुक्ति है, और क्या मुक्ति है? इसको विचार कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शरीर से हम अलग हैं, इसलिए हम इस शरीर को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये जरूर है कि हम जीते हुए नहीं छोड़ा उसको, उसको समझ करके नहीं छोड़ा, जबरदस्ती छुड़ाना चाहते हैं हम, क्योंकि कोई दूसरा अनुष्ठान करे तो मेरा शरीर छूट जाए। अपने आप नहीं छोड़ा ना हमने, अपने आप छोड़ देते उसको तो किसी को कहना ना पड़ता। यदि ज्ञान से छोड़ते तो दूसरे को नहीं कहना पड़ता। अब हम कहते कि दूसरा करे तो जबरदस्ती छूट जाए, तो छोड़ना हमने अपने आप है, दूसरे के कहने से नहीं छूटेगा, दूसरे के कहने से छूटेगा तो फिर आ जाएगा। छोड़ना हमने अपने आप है, रहते हुए छोड़ना है, ज्ञान में जा करके ज्ञान के द्वारा छोड़ना है। तो ये कहते हैं महापुरुष की सकल दृश्य सो अध्यास, संपूर्ण जो सकल जो दृश्य है ये अध्यास है, इसको छोड़ना है हमने। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि इसको छोड़ने का कि इसको काट के फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ये हमारे को दिखना है हट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आंख से हम सुन नहीं पाएंगे कि प्रपंच है नहीं है, कहीं झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं, ये नहीं कि हमारा शब्द सुनने से रुक जाएगा, हमारी आंखें देखने से रुक जाएगी, या हमारा जो नासिका है वो सुगंधी लेने से रुक जाएगी, कुछ भी नहीं रुकेगा, फिर भी उसको छोड़ना है। तो इसलिए उसको रहते हुए कैसे छोड़ना है, उसकी आसक्ति छोड़नी है। जैसे आप लोगों ने एक साखी सुनी होगी, कई बार सुनी होगी, कि गुरु अर्जन देव महाराज जी को एक सिख ने पूछा कि जिस ब्रह्म ज्ञानी की आप बात करते हैं कि जो निर्लेप रहता है, बहुत लोगों का प्रश्न होता कि घर में हमारे को ज्ञान क्यों नहीं होता, आप लोग घर बार छोड़ के कहते हैं कि ज्ञान होता है, हम लोगों को क्यों नहीं हो सकता। घर में रह करके ज्ञान तो होता है, लेकिन छोटी मोटी बात नहीं है, घर में निर्लेपता रहनी बहुत बड़ी बात है। जो छोड़ करके जाते हैं बाहर, जब वो घूम करके फिर वहीं आ जाते हैं, तो जो घर में रहते हैं उनका क्या हाल होगा, कैसे छोड़ेंगे वो। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं, एक बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि आप जब प्रश्न करते हैं ना कि हम भी सन्यासी हो सकते हैं घर में रहते हुए, यही कहते हैं ना, कहते हैं कि हम भी सन्यासी हो सकते हैं। सन्यास का अर्थ तो त्याग होता है ना, वो भले कोई घर में कर ले बाहर कर ले, सन्यास का अर्थ है त्याग। न्यास मतलब त्याग, सन्यास, न्यास कहते हैं त्याग को, सन्यास का मतलब भरी पूर्वक त्याग, अच्छी तरह त्याग। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं यदि संन्यास लेना है ना आपने घर में रहते हुए, तो हम बताते हैं आपको कि घर में कैसे संन्यासी होता है। कभी सुना हैगा, आपने सुना भी होगा, महाराज जी कहते हैं कि रे मान ऐसो कर संन्यासा। रे मान का अर्थ हे जीव, हे जिज्ञासु, संन्यासा इस प्रकार का संन्यास तू कर, कैसा, मान से सदन सबे कर समझो, मन ही माहे उदासा। फिर तो हम मान लेंगे तुम सन्यासी हो घर में रहते हुए। मन से सदन सबे कर समझो, घर में रहते हुए जैसे वन में रहते हुए किसी से संबंध नहीं ना रहता, जंगल में रहते हुए एक दूसरे को कोई नहीं जानता कौन कहाँ है, ऐसे आप घर को जंगल समझ लो एक। वन से सदन, वन वर्गा, जंगल जैसा, पूरा घर जंगल जैसा समझो, मैं जंगल में रह रहा हूं, तो जंगल में कोई किसी से संबंध नहीं रखता। मन से सदन सब जय सब कर समझो, मन ही माहे उदासा, मन के अंदर ही उदास रहो, मन ही माहे, क्योंकि उदास तभी होंगे जब आप किसी से संबंध नहीं होगा आपका, जब हमारा संबंध टूटता है ना किसी से, तब हम उदास होते हैं, पहले नहीं होते हैं। जिससे हमारा संबंध होता है जब टूटता है उस दिन हम उदास होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन होते तभी हैं जब संबंध टूटता है, तो जंगल में संबंध किसी से होता ही नहीं है, इसलिए उदास रहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि वन से सदन सबे कर समझो, मन ही माहे उदासा। फिर क्या कहते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं जट की जटा, क्योंकि वो जटाएं रखते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, जटाएं रखते हैं, फिर योग करते हैं, तो कहते जट की जटा। जटा कौन सी चाहिए आपको, जट की, तो जट का अर्थ क्या होता है, हाँ जी, जट का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, नियम, पतिव्रत धर्म, पत्नी व्रत धर्म और पतिव्रत धर्म दोनों ही होते हैं। पति के लिए पत्नी व्रत और पत्नी के लिए पति व्रत, यह भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं, समझाते हैं शुद्ध जबते हम तरी, शुद्ध जबते हम तरी। जिस दिन से हमने शुद्ध ली है ना, तो हमारे पिताजी ने हमारे को वचन दिया है, एक वचन ऐसा समझाया गुरुजी ने, वचन गुर दए हमारे, हमारे गुरुजी ने वचन दिया है कि जब तक पुत्र तुम्हारे शरीर में प्राण है, तब तक निज नारी के साथ नेहो तुम नित बढ़ाइयो। जो आपकी स्त्री है ना, जो आपकी पत्नी है, उसके साथ तुम अनंत प्रेम करो, बहुत प्रेम करो। पर नारी की सेज भूल सपने होना चाहिए, ये कहते हैं हमारे पिताजी के वचन हैं। जब से हमने शुद्ध ली है, जब तक, जब से हम बड़े हुए हैं, हमारे को समझ में आया, तो पिताजी ने यह वचन कहा है कि निज नारी के साथ नेह तुम नित बढ़ाइयो, पर नारी की सेज भूल सपने होना चाहिए, सपने में मैं भूल करके मत जाना। तो ये नियम है, ये जत, ये है जत। भाई गुरदास जी महाराज कहते हैं कि देख पराइयां चंगियां मावा भैणा धियां जाने, भाई गुरदास जी का वचन है, देख पराइयां चंगियां मावा धियां भैणा जाने, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। जो पराई बेटी है उसको बेटी जानो, और पर स्त्री को मात बखाने, भले वो अपने भाई की क्यों ना स्त्री हो। ये बात नहीं कि प्राय स्त्री को बड़े वाली हो, भले आपके भाई की भी स्त्री क्यों ना हो, पर स्त्री को मात बखाना, उसको माता कह के बोलना है, भले आपकी भाभी क्यों ना लगती हो, बाकी की तो बात ही क्या है। जो भी प्राय की स्त्री हो उसको माता कहना है आपने, उसको कहते हैं जात, जात की जटा। ऐसी जटा आप घर में रहते हुए धारण करो। जोग को मज्जन, मज्जन फिर हर रोज अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में मज्जन मतलब स्नान करते हैं गंगा में, तो योग का मज्जन करो। योग करना ही आपका स्नान है। योग कर तो होता है क्या, योग का अर्थ क्या समझते हैं आप, ये भी योग है जो सुबह सुबह करते हैं योगा, इसको भी योग कहते हैं ना, योगा करते हैं, हठ योग भी होता है ना, आसन करने प्राणायाम करना, ये भी योग है, लेकिन यहां ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, लेकिन शंकराचार्य जी योग का अर्थ अलग करते हैं। शंकर भाष्य गीता में शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुख के साथ जो संयोग है ना, उसका भी योग होना ही योग है। दुख के साथ हमारा संयोग है, दुख है संसार, संसार के साथ हमारा संयोग है, इस संयोग का वियोग होना ही योग है, इसको कहते हैं योग। दुख के साथ संयोग का वियोग ही योग है। तो बात तो वही आ गई भी इस संयोग को छोड़ेंगे तभी योग है, इस संयोग को छोड़ना ही योग है। तो कहते हैं कि जत की जटा योग को मज्जन, मज्जन कैसा करना है, संयोग को छोड़ के अलग होना, ये मज्जन है। और नेम के नखन बढ़ाओ, बड़े बड़े नखन होते हैं सन्यासियों के, नखन इसलिए होते हैं भाव, मतलब संसार की कोई चीज लगाएंगे तभी तो होगा ना, वो कोई चीज लेते ही नहीं, कैसे काटेंगे वो। नेम के नखन बढ़ाओ, नियम, नियम मतलब नियम, नखन कौन से बढ़ाने हैं, नियम के, नियम तो यही है ना, जात सात तप पवित संतोख दया धर्म गरीबी, अच्छे गुणों को धारण करना, ये सभी नियम है। धर्म का पालन करना, दूसरे के ऊपर दया करना, संतोष धारण करना, ये सब नियम है। ये नियम रूपी नखन बढ़ाओ, जात की जटा लोक को मजन, नियम के नखन बढ़ाओ, फिर ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो, नाम विभूत लगाओ। एक ज्ञान गुरु, ज्ञान गुरु का अर्थ भी हो सकता है कि ज्ञान को ही गुरु मानो, जैसे महाराज जी कई लोग ऐसा अर्थ करते ना कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब पूछा सिद्धों ने कि आपका गुरु कौन है, तो कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वो कहते हैं कि हमारा शब्द ही गुरु है, जो हमारी श्रुति है वो हमने उस शब्द की चेली बना रखी है जो हमारी वृत्ति है। शब्द गुरु सुरत सुरतमल श्रुति वृत्ति, वृत्ति हमारी चेला बनी हुई है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान गुरु अथवा गुरु के पास जाकर के ज्ञान का ग्रहण करो। तो तत्व ज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत, यह कहती है उपनिषद। तो ऐसा जो आचार्यवान पुरुषो ही वेद, जो आचार्य के पास जाता है, गुरु के पास जाता, उसी को ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान के लिए जिज्ञासु को गुरु के पास जाना चाहिए। समित पाणी, हाथ में भेटा लेकर के कोई, और क्या श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा गुरु नहीं, क्योंकि काचे गुरते मुक्त ना हुआ उसे मुक्ति नहीं होती। ओ आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, ज्ञान गुरु, ज्ञान को गुरु मान के, और ज्ञान का मतलब ज्ञान को उत्कृष्ट मान के। गुरु का अर्थ तो होता है जो हमारे अंदर का अज्ञान मेट करके ज्ञान का प्रकाश कर दे, वही गुरु है। तो ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, आत्म का उपदेश, गुरु से ज्ञान लेकर के, अथवा जो ज्ञानी गुरु हैं उनसे आत्मा का उपदेश ग्रहण करो। और नाम विभूत लगाओ, विभूति भी लगाते हैं सन्यासी लोग, तो नाम की विभूति लगाओ, नाम विभूत लगाओ। फिर क्या कहना है, अल्प आहार स्वल्प सी निद्रा, ऐसे होता है ना सन्यास, अल्प आहार थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, और स्वल्प सी निद्रा थोड़ी सी निद्रा, ये नहीं कि मतलब 15 रोटी खाओ और 12 घंटे सो, ऐसा नहीं, तब कुछ नहीं होगा। थोड़ा खाओ और थोड़ा सो, अल्प आहार स्वल्प सी निद्रा, फिर दया क्षमा तन प्रीत, सबसे सेवक धर्म कठोरा, और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण, दया धर्म का मूल है, क्योंकि धौल धर्म दया का पूत, हाँ जो धर्म है ना वो दया का पुत्र है, तो इसलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, मूल है उसकी, जड़ है उसकी, माँ है दया, तो उसको पहले पकड़ो। जब दया आ जाएगी ना तो फिर बाकी कौन तो अपने आप आ जाते हैं, दया आनी बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं कि दया क्षमा, दया करो और क्षमा करो। क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा किसी के ऊपर जोर नहीं चलता तो हम कह दें कि हमने क्षमा किया आपको, वो क्षमा नहीं होता। हमारे को किसी ने गाली निकाली या थप्पड़ लगाया तो हमारे में पावर नहीं है उसको जवाब देने की, तो हम कहेंगे आपको क्षमा कर दिया, इसको क्षमा नहीं कहते हैं, ये तो कायरता है, इसको कायरपना कहते हैं कि हमारे बस में बात नहीं है। आप में उसको दुगना डांट देने की समर्थ है, उसने 4 थप्पड़ लगाए आप 10 लगा सकते हैं, फिर भी आपने उसके ऊपर रहम किया, इसको कहते क्षमा। किसी का मतलब उत्तर देने की समर्थ होते हुए उसको बख्श देना, उसको कहते हैं क्षमा। दया भी करो और क्षमा भी करो, दया क्षमा तन प्रीत, ये कहते हैं कि शरीर के द्वारा दया भी करो, क्षमा भी करो, और प्रीति धारण करो, प्रेम धारण करो, आत्मा में प्रेम करो, परमात्मा में प्रेम करो। फिर क्या होगा, जब ऐसा होगा ना तो कहते हैं गुरु महाराज जी की, जद की जदा जो को मजन नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम भूत लगाओ, अल्प आहार सुल्प सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, फिर सील संतोख सदा दरवाह हो वह त्रिगुण अतीत, सभी पूरा वेदांत उसी में घट जाता है। सील संतोख, शील का अर्थ ही होता है जत, शील स्वभाव रखना, मिठा स्वभाव रखना, और अपने नियम में रहना, और संतोष धारण करना, जथा लाभ संतोष, जितना भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। सब्र और संतोष दो चीजें होती ना, सब्र और संतोष। तो सब्र संतोष का एक बार प्रश्न चला था औरंगजेब की सभा में, सब्र और संतोष का अर्थ पूछा एक, पता नहीं जुनान से या कहीं से, एक किसी राजा का मंत्री आया था, उसने कहा कि सब्र संतोष का वहां चला था प्रश्न उसके देश में, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि आप जाइए भारत में, वहां औरंगजेब की सभा में बड़े बड़े आलम फाजल लोग हैं, इसका उत्तर वही मिल सकता है। और उसने कहा वहां भी आम कोई आदमी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, सरमद फकीर इसका उत्तर देगा। सरमद जी बहुत तकड़े फकीर थे ना
जी।
तो जब सब्र संतोष की बात चली औरंगजेब की सभा में, वो आया मंत्री, तो उसने पूछा कि मैं सरमद से मिलना चाहता हूं। तो सरमद को उसने पकड़ रखा था, जेल में डाला था औरंगजेब ने सरमद फकीर को। नंगा रहता था, अल्फ नंगा रहता था सरमद, अल्फ नंगा दिल्ली में रहता था वो, कहीं भी बाजार में घूमता था अल्फ नंगा। तो औरंगजेब उससे बहुत जलता था, वो कहता था कि दाराशिकोह को मैंने बादशाह बनाया, तू बादशाह नहीं है। जब भी कहीं औरंगजेब लांघता था उधर से, वो कहता दाराशिकोह को हमने बादशाही दी है, तुम तो कंगाल हो, हमने आपको बादशाही नहीं दी। ऐसा महाराज बोलता था वो कि दाराशिकोह बादशाह है। दाराशिकोह उसका बड़ा भाई था ना जो, वो बहुत मतलब भक्त था ना वो, और साईं मियां मीर का चेला था वो। तो सरमद कहते थे दाराशिकोह को बादशाही हमने दी है, तेरे को नहीं दी। अपनी मस्ती में रहते थे वो, अल्फ नंगे रहते थे। एक बार जा रहे थे वो, औरंगजेब जा रहा था पालकी पे ऊपर हाथी के बैठ के, तो बैठे थे सामने। वो कहता कि इसको, इनको इसको कहो कि हम तेरे को कपड़ा दे देते हैं, यदि तेरे पास कपड़ा नहीं है तो इसको कपड़ा दे दो। ऐसे उसने व्यंग से बोला। तो सरमद को जब उन्होंने कहा कि वो कहते कि तेरे को कपड़े की जरूरत है, मेरे को नहीं है। उसने कहा कपड़ा उसको चाहिए जिसके अंदर कोई छिद्र होता है ढकने के लिए, हमारे अंदर कोई छिद्र नहीं है, हमारे को ढकने की जरूरत नहीं है, तेरे को कपड़ा चाहिए। दाराशिकोह को बादशाही दी है, फिर बोला उसने। तो उसको क्रोध आ गया, उसने कहा इनको पकड़ के जेल में डाल दो। तो जेल में डाल दिया, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो जब सब्र संतोष का महाराज जी प्रश्न चला, तो कोई उधर से बाहर से किसी देश से आए थे पूछने, उनका सरमद को हमने मिलना है। तो सरमद जी के पास जब उन्होंने कहा, वो तो जेल में फलाने फलांग कोठरी में है। तो जब उनके कोठरी के बाहर जा करके उसने नमस्कार करके पूछा कि महाराज जी मेरे को सब्र संतोष का अर्थ बताइए। वो अपनी मस्ती में बैठे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल को आना आपने, कल को आना, कल सुबह थोड़ा मस्क में पानी लेकर के आना और स्नान करके आना, तब हम बताएंगे। जब वो दूसरे दिन तैयार होकर के आया, तो वो बाहर बैठा था, एक आदमी औरंगजेब का आया कोई सिपाही, उसने सरमद जी के 100 कोरड़ा मारा, कोरड़े मारते थे ना पहले सजा, वो देख रहा था बाहर बैठा, 100 कोरड़ा उनके यहाँ लगाया पीठ पर, वो बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उनको एक प्याला पानी का दिया पीने के लिए, उन्होंने पी लिया, वो चला गया आदमी। तब उन्होंने उसको आवाज़ मारी, वो कहता महाराज हमारे को आप अर्थ बताइए। वो कहते आपको पता नहीं चला अभी, वो कहते अभी आप समझे नहीं। कहते नहीं महाराज जी, सब्र और संतोष दो चीजें हैं ना, एक नहीं है। वो कहते है कि जब हमारे को 100 कोरड़ा उसने लगाया था ना, पूरे देवी देवता ऊपर खड़े हैं, देख तेरे को मैं दिखाता हूँ, पूरे देवी देवता सभी खड़े हैं। वो कहते हैं कि एक बार साईं जी आप आज्ञा कीजिए, तो औरंगजेब को तहस नहस कर देंगे एक मिनट में। लेकिन यह सब्र है, यह संतोष है, सब्र है, उनको हमने आज्ञा नहीं दी। वो कहते आप बताइए, ये संतोष है हमारा, सब्र है, सब्र करके बैठे। सब्र का मतलब होता किसी चीज को मतलब सहन करना, उसको सब्र कहते हैं। तो कहते हमने सब्र किया, उसके बाद आपने देखा है कि 8 पहर के बाद हमारे को एक प्याला पानी का मिलता है, 8 पहर के बाद 24 घंटे के बाद हमारे को एक प्याला पानी का मिला तो हमने संतोष किया। ये आपके सबर संतोष का उत्तर है कि सबर भी करना चाहिए, संतोष भी करना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं भी शील संतोष सदा निर्वाह करो, इसलिए शील का संतोष का सदा निर्वाहन करो अपने जीवन में। हर रोज संतोष जितना मिलता उसी में मस्त रहो, तभी संतोष को आप धारण कर पाएंगे। सदा निर्वाह हो, एक दिन नहीं कि आज कहता कि आज तो हम इतने में प्रसन्न हैं। कभी रजे होते हैं, हम लोग रज जाते हैं तो थोड़ा सा कोई और देता तो कहते नहीं अभी हम प्रसन्न हैं। ऐसा संतोष नहीं चाहिए कि हमारे अंदर ग्रहण करने की जगह ही नहीं तो हम कहें कि हम तो संतोषी हैं। हर रोज मतलब सदा के लिए संतोष धारण करो। वो है वो त्रिगुण अतीत, और तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। ये भी बात मारे ने उसी उसी में कही, उसी वचन में वैभव त्रिगुण अतीत। फिर महाराज जी कहते हैं काम क्रोध अहंकार लोभ हठ। काम क्रोध लोभ मोह सब जितने हैं, और हठ है मोह ना मन से लियावे, तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख कह पावे। जब आप ऐसे सन्यासी बनोगे तभी कहते हैं अब आत्म तत्व को दर्शी हो जाओगे, आत्मदर्शी तत्वदर्शी तत्व वेता तभी हो पाओगे। जब इतने जो हमने आपको बताए हैं ना नियम, इनको धारण करोगे तब ही आत्म तत्व को दर्शे, क्योंकि आत्मा वारे द्रष्टव्यम। ये कहते हैं ना मैत्रेयी को, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आत्मा वारे, अरे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम। आत्मा ही दर्शन करने के योग्य है, आत्मा का ही मनन करना चाहिए, आत्मा का ही निधिध्यासन करना चाहिए। तो महाराज जी वचन तो वही कहते हैं ना, हमारी भाषा में कहा उन्होंने, लेकिन ये वचन इतना गहरा है जो हमने आपको सुनाया, इसके ऊपर भले आप 6 महीने बोलते रहो, 6 महीने भी बोलते रहो तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन है गुरु गोविंद सिंह महाराज का वचन है। अब आप तो हम लोग बैठे हैं ना, अब ये लोग कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ गुरबाणी का प्रचार करते हैं, स्वामी जी बैठे हैं इनके ऊपर, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, वो प्रचार कर रहे हैं हमारा कि ये लोग वाणी पढ़ाएंगे यहाँ। ये कौन सा जहाँ हम कुरान पढ़ा के किसी को झगड़े में डाल देंगे क्या? अब ये भी तो गुरबाणी है, जो लोग जिन लोगों को मालूम नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं उनको क्या पता है? अब ये गुरबाणी है क्या वेदांत है? इसमें कौन सा नहीं है? गुरबाणी का मतलब क्या होता है?
नहीं, एक ही है।
जो गुरुओं के मुख से निकली होती है वो गुरबाणी होती है, तो ये भी गुरुओं के मुख से निकली है, ये कहाँ से निकली है? गुरबाणी केवल गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को गुरबाणी नहीं कहते, जो गुरु के मुख से निकली वो वाणी होती है, ये सब गुरुओं के मुख से निकली है। तो जिन लोगों ने कभी सुना ही नहीं उनको क्या मालूम है कि कितना कितना सिद्धांत है। ये जो मैं आपको वचन सुना रहा हूँ ना, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के शब्द हजारे हैं, कल हमने इनको पढ़ाए हैं पूरे, कल ही पढ़ाए हैं इनको, ये कम से कम 10-11 वचन हैं, इनको पूरे को कभी विचार करेंगे तब देखिएगा क्या बनता है, कि महाराज जी क्या क्या मतलब सुंदर उपदेश देते हैं। ये शब्द हजारे हमारा जी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के उच्चारण किए हुए, हाँ रेमन ऐसो कर संन्यासा, फिर रेमन ऐसा जोग कमाओ, अगे ऐसा भी है, नीलकंठ बनवारी वाला शब्द भी उसी में आता है, मित्र प्यारे नु हाल मरीदा का कहना, ये सब उसी में आता है। तो महाराज जी कितना सुंदर उपदेश करते हैं कि तब ही आत्मदत्त को दर्शे परम पुरख कह पावे। फिर आप आत्मदर्शी तत्वदर्शी हो करके परम पुरुष जो है उसको पा सकते हैं, उसके साथ अभेद हो सकते हैं। इसलिए बात हमारी ये चल रही थी सकल दृश्य सो अध्यास। स्वामी जी ने मेरे को बोला था कि आप जल्दी बहुत चलाते हैं, आज मैंने कहा जैसे आप चलाते हैं वैसे चलेगा।
सबको आनंद है,
हाँ जी
सबको आनंद है, उस तरह नहीं पता लगता।
हाँ
मुझे नहीं लगता था,
अभी कैसा लगता है?
बहुत आनंद है।
आपकी दया से ही हो रहा, हमारे को कुछ नहीं आता महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ही है। तो सकल जो प्रपंच है ना, ये अध्यास है, इसको हमने छोड़ना है। तो छोड़ना तभी होगा जैसे मतलब बात ये होती, जैसे हम कहते हैं ना कि हम सत्संग करने जा रहे हैं, सत्संग करना है, संग करना, हमने सत का संग। एक महापुरुषों ने ये अर्थ किया, कभी कोई कर नहीं सकता ऐसा अर्थ उन्होंने किया सत्संग का। ओ महाराज जी बिल्कुल प्रज्ञा चक्षु थे, प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज, शरणानंद जी महाराज सुना ना आपने, हमने तो सुना नहीं, दर्शन नहीं किया। हाँ तो शरणानंद जी महाराज ने महाराज जी सत्संग का अर्थ पता क्या किया,
वो कहते खंडाला जाते,
अच्छा अच्छा वृंदावन के थे वो,
मैंने पता
प्रज्ञा चक्षु थे। हाँ तो आपने तो दर्शन किया होगा उनकी, मतलब जो व्याख्यान इतना गहरा है कि वो अपने व्याख्यान में कोई भी श्रुति या शब्द नहीं बोलते, कभी एक भी श्लोक नहीं बोलते हो, उनकी पुस्तक में कहीं एक भी श्लोक नहीं लिखा हुआ जिसका उन्होंने अर्थ किया हो, कोई भी महाराज श्रुति या श्लोक उन्होंने कभी नहीं बोला, पूरा अपने अंदर से बोलते हैं, प्रज्ञा चक्षु थे वो। वो कहते हैं कि सत्संग का अर्थ क्या है, उन्होंने किया सत्संग का महाराज अर्थ। वो कहते हैं सत को तो आप जानते ही हैं सब लोग, सत चेता आनंद जो प्रभु है उसको सत कहते हैं, उसका संग क्या है। वो कहते हैं सत्संग में तो आप लोग हर रोज बैठते हैं, कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन संग हुआ कहाँ। संग का अर्थ है प्राप्ति, वो कहते हैं संग का अर्थ है प्राप्ति, किसी के साथ बैठ जाना। तो सत के साथ हम कैसे बैठेंगे, भाव सत में अभेद होना, वो कहते ये है सत का संग, सत के साथ अभेद होना ही सत का संग है। तो कहते हैं कि सत का संग करने के लिए हमारे को करना क्या पड़ेगा, हम तो लोग कहते हैं कि सत्संग करने जा रहे हैं, लेकिन संग यदि हो जाए तो फिर हम वापस कैसे आएंगे, यदि हम सत के साथ अभेद हो जाए तो उससे उठ के आएंगे कैसे, जाते ही रहते हैं, जाते रहते हैं पूरी उम्र, लेकिन सत का संग होता ही नहीं, बोलते रहते हैं कि सत्संग कर रहे हैं लेकिन सत का संग हुआ ही नहीं वास्तव में, यदि हो जाए तो हम निकलेंगे नहीं बाहर फिर। तो कहते हैं कि सत की प्राप्ति, सत में अभेदता, तो जितना साधन कहते हम कर रहे हैं ना, जितना साधन, ये साधन हम सत का संग करने के लिए नहीं करते हैं, केवल हमारे को असत का संग छोड़ना है, सत का संग नहीं करना हमने, सत तो हम हैं, केवल असत का संग जो है उसको छोड़ने के लिए पूरा यह प्रपंच है कि हमारा संग जहां हो रहा है वहां से छूट जाए, जो बाकी बजेगा वो तो सत है। तो हमारा जो संग है वो असत के साथ है, पूरा हम चिपके हुए असत के साथ, क्योंकि सकल दृश्य अध्यास है ना, ये अध्यास हमारा, अध्यास का मतलब हमारा संग हो रहा है, संपूर्ण प्रपंच के साथ ही तो हमारा संग है, वो सारा असत है। असत का संग छोड़ देंगे तो सत का संग अपने आप हो जाएगा, उसको करना नहीं है। वो कहते हैं आपका साधन भी अपने आप हो जाएगा जब आप असत का संग छोड़ देंगे, साधन अपने आप हो जाएगा, साधन आपको करना नहीं पड़ेगा, केवल असत की शक्ति छोड़ दो तो अपने आप सत का संग हो जाएगा। तो सकल दृश्य तो असत है ना, उसको छोड़ना है, सकल दृश्य अध्यास मतलब असत है, उसको छोड़ना कि उसका संग छोड़ना है, वो जाएगा कहीं नहीं, उसको छोड़ने से मतलब दिखने से नहीं हटेगा वो, उसकी असक्ति छोड़ दो आप। और बात एक और चली थी, वो बीच में छूट गई, गुरु अर्जन देव जी के पास जो प्रसंग चला था कि कोई ऐसा है जो घर में रहते हुए निर्लेप है, जब आप कहते हैं, दूसरा वचन याद आ गया था, अब तो समय भी हो गया, वो कल को सुनाएंगे उसको। तो ये कहते हैं कि सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, संपूर्ण जो दृश्य है दिखने वाला है ये अध्यास है, ये भ्रम है, कभी हुआ नहीं, तो इसको जब हुआ नहीं तब भी इसको हम पकड़ रहे हैं, ना होते हुए भी, यदि होता तब तो पकड़ने की कोई बात नहीं। एक महाराज जी कारिकाकार कहते हैं, गौड़ पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशया, यदि ये प्रपंच होता तो इसकी निवृत्ति अवश्य हो जाती, इसमें कोई संशय नहीं है, पर कहते हुआ ही नहीं है। ये जो चीज मतलब घड़ा आपने बनाया है तो घड़े को आप फोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले है वो, उसको आप फोड़ देंगे, लेकिन जब है ही नहीं तो उसको फोड़ेंगे कहां से। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत अवश्य ये निवृत्त हो जाता, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, निवृत्त हो जाता। माया मात्र मिदम द्वैतम, ये तो माया मात्र है, अद्वैतम ये तो अद्वैत है, इसलिए कहते ये हुआ ही नहीं तो इसको निवृत्ति कहां से इसकी। जैसे आप कहते कि निवृत्त की निवृत्ति है, प्राप्त की प्राप्ति है, फिर भी हम नहीं छोड़ पा रहे, हुआ ही नहीं कभी, तीनों कालों में ही नहीं हुआ, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि उसमें आसक्ति एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मर लागी। काला हुआ स्या हो, काला कैसा तवे का पुट्ठा जैसा उल्टा पासा होता ना, ऐसा हो गया, थोड़ा बहुत काला नहीं हुआ, जैसे तवे का पुट्ठा पासा होता ना उल्टा, ऐसा हो गया। उसमें महाराज ने दृष्टांत दिया महाराज जी एक, कि कैसा ये गंदा हुआ है, कैसा मलिन हुआ है, खनली धोती उजली ना हो गई, जे सौ तो बन पाओ। खनली पता किसको कहते हैं महाराज, खनली धोती उजली ना हो गई, महाराज ने यह पंक्ति लिखी ना उसके बाद, खनली उसको कहते हैं जिस कपड़े से कोलू वाला कोलू साफ करता, उसको खनली कहते हैं। कोलू कोलू जो होता ना तेल वाला, वो जो जिससे उसको साफ करता है ना, उस कपड़े को कहते खनली। उसको आप 100 बार भी धो दो ना तो कभी साफ नहीं हो सकता, उसकी थंडाई नहीं जाती कभी। तो ये कहते आपके मन की ये हालत है, कोई थोड़ा बहुत काला नहीं हुआ, उस कपड़े जैसा हो गया, उसको 100 बार भी कहते यत्न करोगे तो साफ नहीं होगा, तो कैसे सकल दृश्य ध्यान छोट जाएगा। इतना मलिन हो गया माना, यो खनली धोती उजली ना हो गई, ये 100 तो बन पाओ, उसको 100 बार धो दो तब भी वो पवित्र नहीं होता खनली वाला कपड़ा। ऐसा हमारा मन है, ऐसी हमारी मन से अंतःकरण लेना, मन का मतलब अंतःकरण, इतना मलिन हो गया। तो जब तक हमारा मन मलिन है, अंतःकरण मलिन है, तब तक शुद्धि कहाँ से होगी। उसी के अंदर तो पूरा प्रपंच है, उसी के अंदर ज्ञान हमारे को दर्शन करना है। पानी में जब तक पानी गंदा है तो उसमें से प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, जब पानी साफ होगा तभी उसमें से प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो पहले हमारे को अंतःकरण की शुद्धि करनी है, अंतःकरण की जब शुद्धि हो जाएगी, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व कहते हैं अंतःकरण को। जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तब हमारी जो अंदर हमारे ग्रंथि पड़ी ना, चेत जड़ की ग्रंथि पड़ गई वाली बात है तो मृषा लेकिन छूटत कठिन नहीं, है तो मृषा है, मिथ्या है लेकिन छूटती नहीं है। तो हमारा मन जो है वो जन्म जन्म की इस मन को मर लागी, काला हुआ स्या हो। पूछा गुरु नानक देव जी से सिद्धों ने कि इस मन को धोने का कोई साबुन है, वो कहते हैं कपड़े को धोने के लिए साबुन है, शरीर को मिट्टी लग जाए तो पानी से साफ हो सकती है, पर ये हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखे, पानी से भी वो घे जो मिट्टी है उतर जाती है, फिर मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए ओह धोए। लेकिन जो हमारी बुद्धि है भरिए मत पापा के संग, उसके लिए ना पानी है ना साबुन है, ओ धोपे नावे के रंग, वो ना पानी से धुपती है ना साबुन से धुपती, उसके लिए नाम का साबुन चाहिए। तो जो जन्म जन्म की लगी हुई इसको मैल है ना खनली धोती, वो केवल नाम से ही उतर सकती है, बिना नाम से नहीं उतर सकती। प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ेगा पहले पहल, तो नाम में बहुत कुछ आ जाता, भक्ति उपासना ध्यान सब नाम ही का रूप है ना, नाम में सब कुछ आ जाएगा, भक्ति है उपासना है ध्यान है, ये सब कुछ नाम में आ जाता है। जैसा जैसा हमारे को स्टेप मिलेगा धीरे धीरे, तब हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो जब हम सकल दृश्य अध्यास छोड़ना तभी होगा जब हम असत से थोड़ा हटेंगे, बोलिया रब दा की पौना इधरों पुटना इधर लाना। तो पहले सकल दृश्य अध्यास, महाराज जी हरिओम, संपूर्ण जब अध्यास हम समझ जाएं तभी तो छोड़ें कि ये हम दृष्टा हैं और ये दृश्य है, तो इसको दृश्य पहले मानेंगे ना, इसको दृश्य तो मान ले हम लोग, हम दृश्य इसको मानते ही नहीं, हम अपने आप को दृष्टा मानते कहाँ हैं, हमने भी सकल दृश्य के अंदर ही अपने आप को मान रखा है, हम भी दृश्य रूप में आ रहे हैं, दृष्टा रूप में कहाँ आ रहे हैं। जिस दिन हम दृष्टा बन जाएंगे तभी हमारे को दृश्य अलग प्रतीत होगा, अभी हमारे को अलग प्रतीत ही नहीं होता, कहने मात्र तो है लेकिन अलग प्रतीत होता ही नहीं। हमारी भी हालत तो वही है ना, जो ये सत्य है कि वो सत्य है, प्रश्न तो हमारे अंदर वही खड़ा है, ये सत्य है कि वह सत्य है, ये प्रश्न में नहीं आता, उसको तो प्रश्न भी हो गया था, हमारे को ये भी नहीं उठता, हमारे को ये है कि ये भी सत्य है वो भी सत्य है, हमारे लिए तो दोनों सत्य हैं। जब हम सुन लेते हैं कि परमात्मा सत्य है तो ठीक है वो भी सत्य है, लेकिन प्रपंच भी हमारे लिए सत्य है, इसलिए उसको हमने पकड़ा, सत्य समझ के पकड़ा है, असत्य समझता जब कोई वो पकड़ता नहीं है, कई चीज़ें हम असत्य समझ के छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ख्याल नहीं करते, उसके लिए है वैराग, जो हमारे साथ में है ना खर संपत्ति, तो उसके लिए वैराग्य है। तो वैराग्य किसको कहते हैं, मोटा मोटा वैराग्य का लक्षण क्या है, सुना होगा आपने स्वामी जी से, वैराग्य किसको कहते हैं, वैराग्य कहते हैं कि चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भोग हैं उन भोगों को काग विष्टा के समान जानना, ये है वैराग्य। तो जब हम अपनी जो हमारी विष्ठा है ना, जो हमारी अपनी विष्ठा है, जो हमारे अपनी गंदगी है, उसकी तरफ तो नहीं देखना चाहते, लेकिन बाकी जितनी गंदगी है उसको हम सारी उम्र इकट्ठा करते रहते हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वैराग्य का लक्षण क्या है कि ये सब विष्ठा है, संपूर्ण चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत विष्ठा के समान समझ के जानना इसको, लेकिन हम अपनी विष्ठा को नहीं देखना चाहते हैं, एक बार गंदगी करते उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, लेकिन संसार रूप गंदगी तो हम यत्न से इकट्ठी करते रहते हैं, तो वैराग्य कैसे होगा, वैराग्य तभी होगा जब हम उसको विष्ठा के समान जानेंगे। तो ये साधन तो तभी होंगे जब हम गुरुओं के पास आएंगे, सत्संग में आएंगे, बैठेंगे, तभी होगा। तो सकल दृश्य अध्यास छोड़ना, इसको हमने छोड़ना है, छोड़ना कैसे है कि जग आधार में चित्त जोड़ना, बात वही आ गई कि जब हम असत को छोड़ देंगे तो जो जगत का आधार है उससे तो चित्त अपने आप जुड़ जाएगा, जहां जुड़ा है वहां से तो उठाना पड़ेगा ना, जब इधर से अब हमारा टूटेगा तो उधर जुड़ जाएगा अपने आप, जब तक इधर जुड़ा हुआ है हमें नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए, होमे नावे नाल विरोध है, गुरु नानक साहब कहते हैं कि होमे और नाम दा दोनों का विरोध है, दोहे ना बसे एक ठाए, गुरु नानक साहब का ये वचन है कि होमे और नाम दो चीजें हैं, इनका विरोध है आपस में, जहां होमे रहती है वहां नाम नहीं आता, कभी भी नहीं आ सकता, और जहां नाम आ जाता है वहां होमे नहीं रहती, दोहे ना बसे एक ठाए, इसलिए पहले हमारे को होमे का त्याग करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं ना कि हो ना मुआ मेरी मोई बलाए, जा हा हो मैं विचों खोवे, ये भी गुरु जी का वचन है, हा हो मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, हा हो मैं दोनों अर्थ दोनों का आप समझेंगे कि एक ही है, हो का अर्थ भी मैं का अर्थ भी मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हौ हौ का अर्थ है कि अहंता शरीर की, और मैं का अर्थ है कि ममता, वहां दोनों चीजें हैं, आम आदमी को लगता हौ का अर्थ भी मैं का अर्थ भी मैं होता है, महाराज कहते हैं कि हौ हौ का मतलब जो अहम हमारी अहंता है, इंद्रियों में शरीर में अंतःकरण में, इसमें हमारी अहंता होती है, और जो इसके साथ संबंध रखने वाले हैं पुत्र गृह आदि, उसमें ममता होती है। तो जब तक हौ हौ मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जब द्वैत मिट जाएगी तो फिर हरी हरी जन दो ही एक है, हर हर जन दो ही एक है, जब हरी और हरी जन दोनों एक हैं। विभ विचार कछ ना है, विभ मतलब दूसरा, दूसरा तो कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि जलते उपजत रंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। जैसे जल से तरंग उत्पन्न होता है और जल में ही चला, जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिनसै नीत जग रचना तैसे रची। महाराज जी ने कैसे सुंदर दृष्टांत दिए हैं कि ये तो जल के बुदबुदे की तरह है और जल में ही वो समा जाता है, जल से ही उत्पन्न होता है। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जलते भिन्न न होई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। यह परपंच पार ब्रह्म की लीला। नामदेव जी कहते हैं कि जल तरंग अर फेन बुदबुदा जलते भिन्न न होई, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आम न होई। ये तो उसकी लीला है, इसमें विचरता हुआ वो, इसमें रहता हुआ आन ना होई। ऐसा नहीं कि वो बदल के मतलब परिणाम हो गया, ऐसा नहीं, ये तो विवर्त है उसका। यह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत, विचरत का अर्थ है इसमें वो विचरण कर रहा है, इसमें रमा हुआ है, आन ना होई। ऐसा नहीं कि बदल के वो दूध की दही की तरह हो गया, ऐसा नहीं है, तो उसका विवर्त है। वहां भी वहां ही लालो अध्यास जितना लगाना है इसी पंक्ति में लगा लो, जितना भी वेदांत लगाना उसी पंक्ति में लग जाएगा। विचरित आन न होई, इसलिए सकल दृश्य अध्यास छोड़ना, जही आज छोड़ देते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।